नारीवादी विमर्श को रौंदता हुआ पुलिंगी विमर्श, पृष्ठ संख्या 33। संसद में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जो हंगामा, वाद विवाद, तनाव उत्पन्न हुआ, उसे देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सहज अनुमान लगा सकता है कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में शताब्दी की संध्या वेला पर स्त्रियों की राजनीतिक उपस्थिति उसके 33% आरक्षण को लेकर कितना हिंसक स्त्री विरोधी पितृसत्तात्मक रुझान काम कर रहा है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि सांस्कृतिक वर्चस्ववाद प्रभुत्व में स्त्री के लिए कितनी और क्या जगह है। 21वीं शताब्दी में भी नारीवादी विमर्श के विकास की कितनी संभावनाएं छोड़ी है पितृत्व सत्तात्मक व्यवस्था ने। अर्ध सामंतवादी, अर्ध पूंजीवादी समाज व्यवस्था, राजनीतिक प्रभुत्व ने स्त्रियों की उपस्थिति को कैसे खारिज किया है, उनके नेतृत्व के रास्ते किस प्रकार बंद किए हैं। जैसे ही सत्ताधारी वर्ग ने महिला विधेयक को प्रस्तुत किया, एक ऐतिहासिक पहल के रूप में ही सही, तमाम पितृ सत्तात्मक सत्ताएं, स्त्री विरोधी शक्तियां एकजुट होकर हिंसक हो उठी। प्रश्न यह उठता है कि यह चिंता, विरोध, बौखलाहट क्यों? दुनिया की आधी आबादी को क्या 33% का भी अधिकार नहीं है? वास्तविकता तो यही है कि उनकी राजनीतिक उपस्थिति नेतृत्व के रूप में ठीक 50% बनती है, क्योंकि यह आधी दुनिया के अस्तित्व का प्रश्न है। लेकिन अर्ध सामंतवादी, अर्ध पूंजीवादी पितृसत्तात्मक शक्तियां कैसे यह सब कुछ बराबरी को सहन कर लेती कि स्त्रियां जो आज तक उनकी उपनिवेश रही हैं, उनके स्वत्वाधिकारों के लिए संसद में सत्ता में स्त्रियों का सही नेतृत्व करे। स्मरण रहे कि पितृक सत्ता स्त्रियों को सिर्फ उतनी ही आजादी देती है, उतने ही अधिकार देती है, जिससे उनके अपने वर्चस्ववाद प्रभुत्व को कोई खतरा चुनौती न लगे। वह स्त्रियों को अनुशासित करता आया है, वह उसकी अधीन अन्य रही है। जैसे ही उसे लगता है कि स्त्री संबंधी कानून, नियम, आरक्षण और बराबरी के सवाल, 33% आरक्षण के सवाल उसके अनुशासन, प्रभुत्व, वर्चस्व के खिलाफ जा रहे हैं, तब तमाम स्त्री विरोधी पुलिंगी शक्तियां संगठित होकर उसका विरोध ही नहीं करती, इस मुद्दे को पूरी असंवेदनशीलता, असभ्यता के साथ अपमानित करती है, उसकी खिल्ली उड़ाती है। क्या यह सब कुछ संसद भवन में उभरते हुए स्त्री विमर्श को दबाने, कुचलने के उद्देश्य से नहीं हुआ? सवाल यहाँ स्त्रियों के 33% आरक्षण का नहीं है, पृष्ठ संख्या 34, अपितु सवाल तो भारतीय सांस्कृतिक वर्चस्व प्रभुत्व के स्त्री दृष्टिकोण को समझने का है। आज भी वह कैसे स्त्रियों को अपने नियंत्रण, वर्चस्व, प्रभुत्व में रखने के लिए कितना अमानवीय, हिंसक एवं क्रूर है। वह उनके बनते अधिकारों को उनसे छीन लेना चाहता है। इसका यह अर्थ भी पूर्णतया स्पष्ट है कि पुलिंगी विमर्श स्त्री विमर्श के उभार को देखकर चिंताग्रस्त भी है और बुखलाया हुआ भी है। वह स्त्रियों के नेतृत्व के प्रश्न से ही भयभीत है कि यह कैसे संभव होगा कि उनकी उपनिवेश आज उनके बराबर समानाधिकार के लिए आगे आए। अतः पुरुष तंत्र पुलिंगी विमर्श कैसे बर्दाश्त कर लेगा स्त्रियों की 33% मौजूदगी? आज 33% तो कल 50 भी मांगेगी। उनमें जागरूकता, संगठनात्मक क्षमता आ जाएगी कि 33 क्यों, 50 क्यों नहीं। पितृसत्ता के लिए यह पहली खतरे की घंटी थी जिसे दबा दफना दिया गया। आज जब स्त्रियां अपने समानाधिकारों, स्वत्वाधिकारों के बारे में जागरूक होने लगी हैं, अपनी अस्मिता, न्याय के लिए संघर्ष करने लगी हैं, तो पुलिंगी विमर्श बौखलाया है। बहुत से सांसदों ने तो इस मुद्दे का जबरदस्त मजाक भी उड़ाया। जाहिर है कि यदि महिलाएं राजनीति में नेतृत्वशील भूमिका निभाएंगी तो स्त्री समाज पर जो बढ़ता जा रहा हिंसक, अमानवीय उत्पीड़न, दमन है, वह कुछ कम हो सकेगा। वहां वह नेतृत्व कर रही जागरूक स्त्रियां उनकी पीड़ा, दुख को वहां पहुंचाएंगी, इस दमन चक्र के खिलाफ आवाज उठाएंगी। आज तक तो पुरुषों ने नहीं उनका दमन उत्पीड़न किया, उन्हें वाणीहीन, अस्तित्वहीन किया। सही अर्थों में जब तक स्त्री समाज का सही नेतृत्व करने वाली कर्मठ, संवेदनशील, ईमानदार, जागरूक स्त्रियां राजनीति में नहीं आती, पुरुषों के वर्चस्व प्रभुत्व को नहीं तोड़ती, तब तक स्त्री मुक्ति के न्यायकारी मुद्दे सामने नहीं आ सकते। इंदिरा भी स्त्री थी, लेकिन वे भी तो इस पुरुष वर्चस्ववाद के खिलाफ नहीं लड़ सकी, बल्कि उसी पितृक मूल्य व्यवस्था का अभ्यांतरीकरण कर चुकी थी। जैसे उस पुलिंगी विमर्श में रहना ही उनकी कमजोरी या मजबूरी थी, वह स्त्री विमर्श न था। स्त्री विमर्श तभी बनेगा जब समाज में नारी नेतृत्वकारी शक्तियों एवं नारीवादी चेतना का उदय होगा। पैराग्राफ चेंज। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रभुत्व वर्ग इस मुद्दे को लेकर बहुत श्रद्धा भाव के साथ सामने आया, पूरे आर्य सामाजिक वेदांती सोच जोश के साथ। यदि सांस्कृतिक वर्चस्व प्रभुत्व में इतनी ही प्रगतिशीलता थी तो विरोध को देखकर पीछे क्यों हटा? तब अर्ध सामंतवादी अर्ध पूंजीवादी किस्म का नारीवाद क्यों आ गया? क्या यह सत्ताधारी वर्ग का स्थिति से पूरा लाभ उठाना नहीं था? फिलहाल सभी पार्टियों ने इस विधेयक को हाशिए में डालकर सिद्ध कर दिया है कि पुलिंगी विमर्श स्त्री विमर्श को कतई उभरने नहीं देना चाहता, यही उसके हित में है। पृष्ठ संख्या 35 कि किसी तरह से उभरते नारीवादी आंदोलनों उसके आधारों को कुचला जा सके, इसीलिए तो ऐसे मुद्दे को लेकर तमाम स्त्री विरोधी पितृक ताकतें संगठित है। यही पुरुषवादी वर्चस्व की विचारधारा है। उसके लिए चुनौती है कि वह अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखे। घोड़ा घास से यारी करेगा तो क्या जिंदा रहेगा? अतः पूरा का पूरा सामंतवाद मुच्छों को ताव देकर गुर्रा रहा है, देखी हमारी ताकत, जानी हमारी औकात, लाकर दिखाओ इस विधेयक में किस वर्ग वर्ण जाति रंग कुल की स्त्रियां आएंगी। अचानक पिछड़ी हुई स्त्रियों के प्रति भी श्रद्धा भाव सामने आया। भारतीय वोट बैंक की थियोरी भी यही रही है। अतः नारीवाद के लिए यह एक ऐतिहासिक दुर्घटना है, इससे उन्होंने सबक सीखना है। पैराग्राफ चेंज। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि आज जैसे हम इस ज्वलंत मुद्दे को भुला बैठे हैं, मीडिया ने भी ऐसी स्त्रियों को नहीं तलाशा जो पुलिंगी विमर्श की चिंदी चिंदी कर सकती थी, जो यह बता सकती थी कि किस प्रकार उनके साथ घोर दुर्व्यवहार हुआ है जो सदियों से ढोल गवार सूद पशु नारी के साथ होता रहा है, और आज वह और भी प्रचंड रूप में सामने आया है। वैसे इसके प्रति सत्ताधारी वर्ग की जिद आज भी वही है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। जितनी भी बाद में प्रतिक्रियाएं आई उनमें स्त्रियां कम पुरुष अधिक थे। आखिर क्या इतनी गंभीर घटना ने स्त्री आंदोलनों को आंदोलित नहीं किया? देशव्यापी चुप्पी क्या दर्शाती है? यह बात भारतीय सांस्कृतिक राजनीतिक परिदृश्य पर नहीं, क्लिंटन में मोनिका सेक्स कांड को लेकर भी यही लगता है कि अमेरिकी फेमिनिज्म इसके बारे में खामोश क्यों है? क्या क्लिंटन के वक्तव्य पुलिंगी विमर्श से प्रेरित स्त्री विरोधी नहीं? वहां का नारीवाद इसके बारे में क्या कहता है? यह घटनाएं पिछड़े हुए राष्ट्रों की ही नहीं अपितु दुनिया के सबसे समृद्ध जागरूक राष्ट्रों में, जहाँ नारीवाद प्रखर सक्रिय एवं जागरूक है, वहां भी बराबर घट रही है। पैराग्राफ चेंज। आज तक स्त्रियों के साथ बलात्कार अत्याचार असभ्य व्यवहार होते रहे हैं। उन्हें जला दिया जाना, दफना दिया जाना, मक्खन लगाकर भूनना भारतीय सामाजिक परिदृश्य में सामान्य सी बातें हैं, जिन्हें उस परिवार का व्यक्तिगत मामला कहकर टाल दिया जाता है। नैतिक स्खलन के आरोप में तलाक दिया जाता है। यदि संसद में देश में नारीवादी आंदोलनों का विकास क्या इस राजनीतिक प्रक्रिया के बिना संभव है? इस दुर्घटना ने एक काम तो अवश्य ही बेहतर किया है कि प्रभुत्व की पुलिंगी संस्कृति उनके साथ किस प्रकार बर्बर असभ्य व्यवहार कर रही है, यह स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हुई है, और नारीवादी चेतना के विकास के लिए भी स्थितियां बननी शुरू हुई है। नारीवाद ने लिंग आधारित अधिकारों को उठाया है, उस लिंगक राजनीति को समझा है। स्त्रियां पृष्ठ संख्या 36 जो आज तक उनके वर्चस्व प्रभुत्व के अधीन थी, वाणीहीन थी, आज अपनी अस्मिता को तलाशने लगी है। नारीवादी चेतना का उभार ही पुलिंगी विमर्श के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए स्त्रियों की इस उभरती हुई चेतना के खिलाफ समूचा भारतीय प्रभुत्व वर्ग संगठित हुआ है। मर्दों की समझ में आया कि यह कैसे संभव होगा कि गुलाम को स्वतंत्र कर दिया जाए। उनका भय मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था कि यदि स्त्रियां केंद्र में आ गई, शक्तिशाली बराबरी के हकदार हो गई, तो उनकी जगह कहाँ होगी और क्या होगी? आज तक तो वह स्त्रियों की चेतना को नियंत्रित, अनुकूलित, अनुशासित करता आया है, अब उसका वर्चस्व प्रभुत्व कैसे कायम रह सकेगा? यही मर्दवादी पुलिंगी विमर्श की चिंता और बौखलाहट है। स्त्रियों को अनुशासन में रखने के लिए अनुशासिकी कैसे किसने गढ़ी? पुरुषों ने। उसने डर हो गया है कि वे उसके पितृक अनुशासन को फिर क्यों मानेंगी, उन पितृक मान्यताओं मूल्यों का अंधानुकरण क्यों करेंगी? पुलिंगी विमर्श का समूचा तर्कशास्त्र भी यही है जिसने स्त्रियों का निर्मम उत्पीड़न किया है। स्त्री विमर्श के खिलाफ खड़ा है, उसे दबाना चाहता है। प्रश्न उठता है कि आखिर सत्ताधारी वर्ग के समक्ष ऐसी क्या भयानक दिक्कत थी कि वह इस विधेयक को सही ढंग से प्रस्तुत ही न कर पाया और इस शानदार अवसर की तलाश में रहा कि कैसे प्रतिपक्ष विवाद पैदा करे और उनका काम उद्देश्य आसानी से हो जाए। दोष पूरा का पूरा विपक्ष पर मढ़ा कि हम तो लाना चाहते थे उसे यथावत रूप में लागू करके एक ऐतिहासिक फैसला करना चाहते थे, स्त्रियों की सच्ची मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन विपक्ष की ही नियति सही नहीं। विपक्ष की नियति सही हो या न हो, लेकिन पक्ष की नियति भी तो संदेह से देखा जाए तो बहुत से अंतर्विरोध सामने आते हैं। इस प्रकार पुलिंगी विमर्श ने अपनी ताकत के विमर्श को दिखा ही दिया कि वह स्त्री विमर्श की जब चाहे बोलती बंद कर सकता है। जिस समाज को घरों, परिवारों, सार्वजनिक क्षेत्रों में बोलने की आज्ञा नहीं, अनुशासन में रहना जिन्हें बचपन से बताया समझाया जाता है, आज यदि स्त्री विमर्श उभरेंगे, पुलिंगी विमर्शों का आक्रामक हिंसक होना अनिवार्य है। यदि आज पुलिंगी विमर्श ने स्त्री विमर्श को खदेड़ने की कोशिश की है तो यह घटना भी ऐतिहासिक ही है। स्त्रियों को अब और अधिक जागरूक, सावधान होने की भी जरूरत है कि पितृसत्तात्मक समाज ने उसके साथ कितना घनघोर अन्याय किया है। कानून, समानता, समान अधिकार, स्त्री अधिकारों की सारी बातें कोरे नारे हैं जिनका वास्तविक जिंदगी से कोई दूर का भी संबंध नहीं है। जब महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सत्ता में इतना हंगामा, विरोध प्रदर्शन खुले आम हुआ तो राष्ट्र में स्त्री आंदोलन क्यों नहीं हुए? स्त्रियों को पुनः उनकी दलित अवस्था में छोड़ दिया गया, उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया, चुपचाप विष का प्याला पीकर पृष्ठ संख्या 37 स्त्रियां रह गई। राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्वशील भूमिका के लिए वो स्थितियां बननी प्रारंभ हुई थी कि अब उन्हें न्याय मिल सकेगा। उनकी आवाज, पीड़ा, दुख को वहां समझने, प्रस्तुत करने वाला कोई तो होगा जो उनकी आवाज, अभिशप्त, संतप्त स्थिति को वहां पेश कर सकेगा, उनके स्वत्वाधिकारों के लिए बोल सकेगा। उस पर पानी फेर दिया गया। वामपंथ भी अब तब अचानक पिछड़ी स्त्रियों के प्रति ही हमदर्दी जताने लगा। प्रश्न उठता है कि स्त्रियां चाहे तो वह किसी भी वर्ग, वर्ण, जाति, कुल की क्यों न हो, वह इस पुरुष तंत्र की अधिनायक शाही के सामने दलित, उपेक्षित, अन्या ही रहेंगी। फिर वह चाहे शूद्र है या ब्राह्मण, वह मूलतः पुलिंगी अनुशासन द्वारा ही अनुशासित एवं अनुकूलित है। विचित्र विरोधाभास तो यह है कि वामपंथी एक ओर तो स्त्री को सर्वहारा, उपेक्षिता, शोषित जाति में गिनते हैं क्योंकि वह दमन को सह रही है, दूसरी ओर आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर एकाएक उन्हें पिछड़ी स्त्रियां ही दिखाई दी। यह अंतर विरोध क्यों? जिस देश में स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता है, उसके शरीर पर मक्खन का लेप करके उसे रोस्ट किया जाता है, मार कर किसी तालाब में फेंक दिया जाता है, बसों, गाड़ियों में जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, नैतिक स्खलन के आरोप में जिसे तलाक दे दिया जाता है, वहां उनकी सुरक्षा की गारंटी संसद में पुलिंगी विमर्श करेगा अथवा स्त्री विमर्श? यह प्रश्न आज भी जबरदस्त चुनौती बनकर खड़ा है कि स्त्री समाज पर होने वाली हिंसा, अन्याय, दमन को कैसे रोका जाए, कैसे उनकी मूकवाणी पीड़ा को वहां तक पहुंचाया जाए। अपराधी को अपराध के कटघरे में खड़ा करने के लिए पुलिंगी विमर्श की नहीं अपितु स्त्री विमर्श की जरूरत है। आज सत्ता में, सर्वोच्च संस्थानों में, कानून व्यवस्था में स्त्रियां न के बराबर है। कहने के लिए तो वे समान है, लेकिन वास्तविक जीवन में उनकी स्थिति दोयम, चिर उपेक्षित है। वे दलित है। यदि स्त्रियों की सत्ता में बराबर की भागीदारी हो, उनकी 33% की अपेक्षा 50% उपस्थिति हो, तो निश्चित रूप से स्त्रियों का नेतृत्वशील वर्ग उनके हितों की सुरक्षा की गारंटी दे सकेगा। अपराधी अपराध के कटघरे में मुजरिम बनकर खड़ा हो सकेगा। स्त्रियों की स्थिति सुधरेगी बदलेगी। आज तक यदि स्त्री समाज की स्थिति में कोई बेहतर परिवर्तन यदि नहीं आ सका है, उन्हें अपने अधिकार नहीं मिल सके हैं, तो इसका कारण है कि राजनीतिक परिदृश्य में पुलिंगी विमर्श का हावी होना, स्त्री विमर्श को दबाना या घटाना है। जब भी स्त्री विमर्श उठेंगे, पुलिंगी विमर्श का हिंसक आक्रामक होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस हिंसा आक्रामकता को रोकने, उसके अमानवीय चरित्र को कमजोर करने का एकमात्र विकल्प है स्त्री विमर्श। सत्ता में स्त्रियों की सतत उपस्थिति और स्त्री विमर्श के लिए नेतृत्वशील स्थितियों का निर्माण करना। सवाल तो यह है कि राजनीतिक प्रभुत्व, पुलिंगी वर्चस्व, क्या स्त्री विमर्श को कोई जगह देगा? यह जगह उन्हें पृष्ठ संख्या 38 जागरूकता संघर्ष द्वारा अर्जित करनी होगी तथा इस उपेक्षित आधी दुनिया को मुक्ति के रास्ते खोजने होंगे। फिलहाल तो स्त्री विमर्श को दबाने, कुचलने, रौंदने के लिए तमाम पुलिंगी सत्ताएं संगठित एवं आक्रामक है, लेकिन स्त्री विमर्श ने भी अपनी जगह विरोध संघर्ष प्रक्रिया में से ही अर्जित करनी है। याद रहे, गुलामों ने भी गुलामी की बेड़ियां, जंजीरें विरोध करके ही तोड़ी थी, जब उन्हें अपनी अधीनस्थ शोषित स्थिति का बोध हुआ था। ठीक उसी प्रकार स्त्रियों को समान अधिकार, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, अस्मिता, गहरे संघर्ष आदि ही मिल सकेंगी। पुलिंगी विमर्श किसी भी कीमत पर उन्हें समानता थाली में रखकर परोसने वाला नहीं है। स्त्री विमर्शों का उठना, स्त्रियों में जागरूकता, स्त्री चेतना का विकास होना, पुलिंगी विमर्श के अंतर विरोधों का प्रचंड रूप में उभर कर सामने आना ही एक ऐतिहासिक परिवर्तन की स्थिति है, जिससे सिद्ध होता है जब स्त्री विमर्श उठेंगे, पुलिंगी विमर्श का प्रभुत्व वर्चस्व ध्वस्त होगा। तभी शायद स्त्रियां समाज में समान अधिकारों, स्वत्वाधिकारों को पा सकेंगी, उन बर्बर असभ्य अमानवीय पंजों को तोड़ सकेंगी जिन्होंने उनके शरीर पर घाव किए हैं। ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों की सुरक्षा फिर कौन करेगा? कौन करेगा उनके साथ न्याय? न्यायकर्ता कौन है, पुरुष या स्त्रियां? अभी भी इस देश में पढ़ी लिखी उच्च पदों पर आसीन स्त्रियों के साथ घरों, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो अपमान होता है, जिस प्रकार वे टुकड़ा टुकड़ा, खंड खंड जिंदगी जीती है, मानसिक तनाव को झेलती है, उसे देखकर प्रतीत होता है कि अभी भी वे उपेक्षिता अन्याय है। संसद में जिस प्रकार महिला आरक्षण विधेयक की धज्जियां उड़ाई गई, मर्दों ने उसका जिस प्रकार असभ्य नारों विरोध प्रदर्शन करते हुए उसको फाड़ा, जो असभ्य वक्तव्य दिए, उसे देखकर स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को किसी भी कीमत पर अपने पांवों के बल खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें पितृ सत्ताओं पर ही आश्रित होना पड़ेगा। प्रभुत्व ने सिद्ध कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर स्त्री विमर्श को पनपने नहीं देगा। यह महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे ने स्पष्ट कर दिया है कि स्त्रियों की सत्ता में सक्रिय उपस्थिति को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। पैराग्राफ 6। अतः पहल करके स्थिति का लाभ क्यों न उठाया जाए? जो काम कांग्रेस पार्टी, संयुक्त मोर्चा, वामपंथी भी न कर सके, उसका सेहरा फिर अपने सिर क्यों न बांधा जाए? हालांकि समूची स्थिति का पूर्वाभास तो उन्हें था ही कि इस बिल को जनतांत्रिक ढंग के बिना इसकी प्रासंगिकता ही क्या रह जाती है। हाँ, एक नाटक अवश्य खेला जा सकता है जिसकी हीरो होगी सत्ताधारी पार्टी और खलनायक प्रतिपक्षी। एक व्यापक पाखंड की सृष्टि का निर्माण हुआ। सस्ती लोकप्रियता, प्रगतिशीलता जुटाने का इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है? सो बहुत ही निष्ठा भाव से बिल का रखा जाना और समूची पितृ सत्तात्मक पृष्ठ संख्या 39 शक्तियों का एकजुट होकर इसकी चिंदी चिंदी करने तथा खिल्ली उड़ाने को मौजूद होना। हालांकि भीतर से यह एक नाटक ही था, इसका हश्र क्या होगा यह सत्ताधारी वर्ग भी जानता था और विपक्षी पार्टियां भी। फिर क्यों न एक नाटक कर दिया जाए? जब खुलेआम विरोध दर्शन हुआ तो सत्ताधारी वर्ग ने स्त्रियों के प्रति अपना आदर, निष्ठा भाव, पूजा भाव प्रदर्शित करते हुए संवेदनशील समर्पित होने का प्रपंच रचते हुए आम सहमति, सर्वानुभूति का जनतांत्रिक पक्ष प्रस्तुत किया कि हम तो चाहते हैं लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। इसमें संदेह नहीं कि पितृ सत्तात्मक समाज प्रभुत्व ने सिद्ध कर दिया कि अब स्त्रियों के लिए सत्ता में प्रवेश, आरक्षण के तमाम रास्ते बंद हैं। अर्ध सामंतवाद, अर्ध पूंजीवाद की जो स्त्रियों के संबंध में नारीवादी आंदोलनों विपक्षों के प्रति जो हिंसक आक्रामक असभ्य समझ होती है उसका भी स्पष्टीकरण स्वयं हो गया। सवाल अल्पसंख्यकों उपेक्षिता से पिछड़ी स्त्रियों के वोट बैंक तक जा पहुंचा। यदि स्त्रियां लिंगाधारित अधिकारों को पाने की इच्छुक है तो उन्हें पुलिंगी विमर्श के प्रतिरोध में स्त्रीवादी चेतना का जबरदस्त विकास करना होगा। इसके बिना अन्याय दमन के खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता। स्त्री विमर्श ही इसका एकमात्र विकल्प है। इसके लिए उन्हें पितृक सत्ता के वर्चस्व प्रभुत्व के खिलाफ जबरदस्त तैयारी करनी होगी। स्त्रीवादी विमर्श आज नहीं तो कल अवश्य ही उभरेगा। समाप्त।